તાની અહંકારો બુદ્ધિ આગળ કરે છે. ઇન્દ્રિયાની દસેક અંશ, દસ ઇન્દ્રિયા એક મન, પંચ ઇન્દ્રિય ગોચરા, પાંચ ઇન્દ્રિયો કે ગોચરમાં વિશે. તો દસ એ અગિયાર, પાંચ સોળા, એ સોળા તો એ વિકાર, અને આઠ હોય પ્રકૃત્યા, તો સોળા આઠ ચોવીસ, ચોવીસ તત્વો હોય. એક શ્લોક મેં વાત બતાવી, યોગ મેં ઓર સાંઠ મેં યે જો પાંચ જો મહાભૂત કે નામ સે જો વાત કહી હૈ, યે વહાં યોગ ઓર સાંઠ કે બીચ કે વહાં તન્માત્રા કે નામ સે કહે ગઈ, ઓર યહાં મહાભૂત યાને સૂક્ષ્મ મહાભૂત, ઓર તન્માત્રાઓ કા નામ વહાં બતાયા શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ ગંધ. શબ્દ તન્માત્રા સમજો કે સ્પર્શ તન્માત્રા, રૂપ તન્માત્રા, રસ તન્માત્રા, ગંધ તન્માત્રા. તો યહાં સ્થુલ જો હે તો પાંચ વિષય બતાવ દે, શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ ગંધ. તો યહાં તો વિષયો કો સ્થુલ બતાવ દિયા, અર વહાં વિષયો કો સૂક્ષ્મ માન લિયા, અર ભૂતો કો એક પ્રકાર સે વહાં સ્થુલ બતાવ દિયા, ઓર યહાં ભૂતો કો સૂક્ષ્મ માન લિયા, અર વિષયો કો સ્થુલ બતાવ દિયા. ઇતના સમજો કે યોગ ઓર આપણે સાંખ કે બીચ મેં ઓર ગીતા કે બીચ મેં કહેને કી પરિપાટી કા ફર્ક હૈ, વિષય વો હૈ. તો ઇસ પ્રકાર સે કી યે જો મૂળ જો પ્રકૃતિ, અર ઇસકે તેઈસ જો આપણે સમજો કે કાર્ય, આગે કહેતે હૈ કાર્ય કારણ કરતી તે હેતુ પ્રકૃતિ રૂચ્યતે. ये भगवान ने फिर तेरहवें अध्याय के बीस के श्लोक के पूर्वार्ध में बताया कि कार्य तो दस और कारण तेरह. कार्य दस कौन की पांच तो विषय और पांच भूत, आकाश वायु तेज पृथ्वी, पांच भूत और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच विषय, ये तो है कार्य. और तेरा द्वार जो है वो कारण, कर्ण कार्य कर्ण, और कहीं कार्य कारण भी कहा, કિંતુ આપણે યહાં પાઠ લીયા કાર્યકરણ. તો યે તેરા તો દ્વાર માને કરણ, ઓર દસ કાર્ય તેજ પદાર્થ. તો કાર્ય કરણ કરતી તો હેતુ પ્રકૃતિ રૂચ્યતે, કાર્ય ઓર કરણ કે ઉત્પાદન મેં હેતુ હતો પ્રકૃતિ ગઈ હે, મૂળ પ્રકૃતિ. તો મૂળ પ્રકૃતિ સે યે તેજ કા વિસ્તાર હોયા. તો એસે યે ચોવીસ જો પદાર્થ જો હૈ, યે ચોવીસ પદાર્થો કા જો સમૂહ હૈ, ये ब्रह्मा जी का अपने स्थूल शरीर है. क्या यूं कह दो कि भगवान का स्थूल शरीर है, भगवान ही तो ब्रह्मा के रूप में प्रकट होते हैं. इस वास्ते नारायण का स्वरूप कह दो, नारायण का ये विराट स्वरूप कह दो, विश्व रूप कह दो. तो ये विश्व रूप जो है आपने समझो कि चौबीस पदार्थ, इसको क्षर पुरुष कहा गया, इसे क्षर पुरुष. और सातवीं अध्याय के मां સાતમી અધ્યાય કે ચોથે શ્લોક કે બીચ કે માં, સાતમી અધ્યાય કે ચોથે શ્લોક મેં ઇસકા નામ કહ્યા ગયા અપરા પ્રકૃતિ. ભૂમિ રાપો નલો વાયુ ખંગ મનો બુદ્ધિ દેવ છે હંકાર ઇતિ મે ઓર ભિન્ના પ્રકૃતિ રસધા. આકાશ વાયુ તેજ પ્રતિ ઓર મન બુદ્ધિ અહંકાર, યે સારા જો હૈ મન બુદ્ધિ અહંકાર, યે આંખ મિલકર કે इसकी संज्ञा क्या हुई कि आंख जो मिलकर के इनको नाम अपरा प्रकृति कहा गया, और जीवात्मा को परा प्रकृति. तो जीवात्मा को परा प्रकृति और आंख उनके समूह को आपने समझो कि अपरा प्रकृति. प्रकृति क्योंकि इससे और सोलह विकार उत्पन्न हुए, तो फिर सोलह रात चौबीस हो जाते हैं. तो चौबीस विकार माने ये चौबीस जो विकार से चौबीस जो पदार्थ ले लेते आठ ले, ऐसी बात है उस आठ से फिर सोलह हो तो चौबीस के चौबीस हो जाएंगे. तो इसको कहते हैं क्षर पुरुष. तो पंद्रह अध्याय के मां तो आपने पुरुष के नाम से माने, ये जो समूह है जड़े इसको भी पुरुष कहा, और जो जीवात्मा उसको भी पुरुष कहा. और यहां सातवीं अध्याय के मां जो है, सातवीं अध्याय के चौथे और पांचवें श्लोक में, चौथे श्लोक में तो अक्षर पुरुष और पांचवें श्लोक में अक्षर पुरुष, उस अक्षर पुरुष को तो परा प्रकृति कह दिया, और अक्षर पुरुष को जो है अपरा प्रकृति कह दिया. और इन्हीं दोनों पदार्थों को तेरहवें अध्याय के मां अक्षर पुरुष को तो अपने क्षेत्र कहा,
खेत और अक्षर जो पुरुष है उसको क्षेत्रज्ञ कह दिया, क्षेत्र का ज्ञाता, कहीं क्षेत्री कह दिया तो क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र, तो कहीं तो एक प्रकार से इन दोनों का जो वर्णन है इनका प्रकृति के नाम से, इसका कि क्षर पुरस्कार और अक्षर पुरस्कार, माने ये जो शरीर और शरीर के मां जीवात्मा, तो जीवात्मा को कहीं तो कह दिया क्षेत्र के और कहीं कह दिया आपने अक्षर और कहीं कह दिया परा प्रकृति। इसी प्रकार से इस शरीर को कहीं तो कह दिया अपरा प्रकृति सातवीं झामे तो, और तेरहवीं झामे कह दिया उसको क्षेत्र, और पंद्रहवीं झाके में उसको कह दिया अक्षर को, तत्व एक ही। तो ये आपको ये नीले करा दी। तो अगस्त और गुण परिस्थिति शाखा, तो मतलब ये दिखाया कि ऊपर से लेकर के नीचे तक, मान ऊपर में भी और नीचे में भी, और बीच आ ही जाता है ऊपर में और नीचे में, चेक से बीच ले लो, बीच में भी सब जगह उसकी शाखा है, तो फैली। तो शाखा क्या फैली? ब्रह्मा जी का जो स्थूल शरीर है उससे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर है उससे सूक्ष्म शरीर। तो हम लोगों का जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, तीन जो शरीर है, इसी प्रकार से ईश्वर के भी तीन शरीर है, स्थूल सूक्ष्म और कारण। व्याकृत जो माया है वो उनका कारण शरीर है, और ये सृष्टि की आदि के बीच के मां जो आपने सूक्ष्म शरीर है जिसके मां यह सारी संसार विलीन हो जाती है, जो बताया गया है वो अमूर्त है, उसका वर्णन किया गया गीता की आठवीं अध्याय के मां 18 और 19 के श्लोक में, आठवीं अध्याय के। अव्यक्तात् व्यक्त असर वे पर भरत है आदमी, उस अव्यक्त से ही ब्रह्मा जी के दिन की आदि में उस अव्यक्त से ही सारी व्यक्तियां उत्पन्न हुई। तो वो अव्यक्त क्या है? वो ब्रह्मा जी का समस्त समझो कि आपने सूक्ष्म शरीर है, उसका नाम हुआ अव्यक्त है, व्यक्ति वो निराकार होने के कारण से। तो ब्रह्मा जी का जो सूक्ष्म शरीर निराकार है, हम लोगों का भी सूक्ष्म शरीर निराकार है, जीवात्मा इसमें से निकल के जाता है तो सूक्ष्म शरीर को ही आश्रय करके जाता है, दिखता नहीं है। तो इसी प्रकार से स्थूल शरीर जो ये सारा विश्व है ये स्थूल शरीर है, और वो सूक्ष्म शरीर है ब्रह्मा जी के दिन के आदि के बीच में जिससे सारी व्यक्तियां मूर्तियां पैदा होती है, स्थूल शरीर पैदा होते हैं। तो ये सारे जो स्थूल पदार्थ आपको दिखते हैं, पहले ये सब निराकार थे, अव्यक्त थे, उस अव्यक्त से ये सारी व्यक्तियां उत्पन्न हुई, आकार वाली सारी चीजें। तो ये ख्याल करना चाहिए कि ये दृष्टि और समष्टि, दृष्टि तो जीव का और समष्टि ईश्वर का, तो ईश्वर का जो समष्टि जो तीन जो शरीर है, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, और जीव का जो है स्थूल शरीर ही है, और इसके भीतर में रहने वाला सूक्ष्म शरीर जो मरने के बाद इससे निकल जाता है, और कारण शरीर जो कि महाप्रलय के बीच में भी इसका शरीर कायम रहता है, वो ज्ञान होने से भी उसे मुक्त होता है। तो ये तीन इसका शरीर, तो ये सारे जो शरीर हैं जीवों के और ईश्वर के, ईश्वर के तो अपने सो समस्ती और जीवों के व्यक्ति, ये सब का जो विस्तार है ये सब ब्रह्मा जी से हो गया, इसलिए नीचे और ऊपर सब प्रकार से उसकी शाखावां फैली। तो शाखावां से क्या चीज रही कि सब के शरीर, और शरीर जिसमें बात करे ऐसे लोग, ये भू लोग, भू लोग, मह लोग, जन लोग, सब लोग, जितने जो लोग है ये भी समझो कि ये पांच भौतिक है, माया का ये सब विस्तार है, लोग भी माया के विस्तार हैं और ये सब शरीर भी माया के विस्तार हैं। तो इन सब को एक प्रकार से तिक्षर कहा गया, नाशवान होने के कारण से, ये परिवर्तनशील होने के कारण से ये घटते हैं, बढ़ते हैं, इनमें विकार होते रहते हैं, छह जो विकार इसके में होते रहते हैं, इसलिए इन चीजों को कहा गया, इस प्रकार से कहा गया कि ये सब आपने क्षर है, क्षण क्षण के मां इनका विध्वंस होता है, ये इसका परिवर्तन होता ही रहता है। तो छह विकार कौन से हैं कि उत्पत्ति और विनाश, क्षय और वृद्धि, और अस्थि और परिणाम। तो ये ख्याल करना चाहिए ये विकार इसे स्थूल के माँ जड़ के माँ है, चेतन आत्मा में नहीं। चेतन आत्मा इन छह विकारों से रहित, इन छह विकारों से चेतन आत्मा रहित। तो उत्पत्ति क्या कि उत्पन्न होकर के कायम हुए, जैसे हमारा शरीर उत्पन्न होकर कायम हुआ, इस प्रकार से आत्मा उत्पन्न होकर कायम नहीं हुआ। तो ये उत्पन्न होकर के कायम होने वाला जो अस्थि जो है, सत्ता जो है, यह विकारी सत्ता है। और उत्पन्न उत्पत्ति उत्पत्ति रूप क्रिया और इसका विनाश विनाश होना और इसका घटना और बढ़ना, क्षय माने घटना और वृद्धि माने बढ़ना और परिणाम माने बदलना। तो ये शरीर में छह बात प्रत्यक्ष आप देख लो कि शरीर घटता भी है और रोज दिन करके देख लो, समझा, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। जन्मा तुम बहुत समझो कोई एक शेर का होगा, आज दिन करे तो डेढ़ मिनट से ज्यादा हो जाएगा, बढ़ता बढ़ता बढ़ गया, और छह का रोग हो जाता तो फिर घटता घटता घट जाता है, तो घटता भी है बढ़ता भी है, रोज बदलता है। आज हम अजामत करा लेते हैं, कल शरीर के सो आ जाएंगे बाद, तो इससे ये परिणाम ही है। और उत्पत्ति इसकी एक दिन उत्पत्ति हुई, एक दिन इसका विनाश भी होगा। उत्पन्न होता है विनाश होता है, इसका अस्तित्व भी है और परिणाम भी होता है और घटता भी और बढ़ता है। ये सब परिणाम हरेक चीज के वहां है, जड़ वस्तु में चेतन में नहीं। तो छह विकारों से चेतन रहित है, ये बात आप गीता की दूसरी अध्याय के बीस के श्लोक में देख ली। ने जायते मृत्यु वा कदाचिन नाई भूतवा भविता वा अनुभूय अजो भी शास्त्र पुराण न हन्न ते हन्न माने शरीरे। ये आत्मा न तो कभी जन्मता है और न कभी मरता है। तो आत्मा होकर के पुनः कायम होता ऐसी बात भी नहीं, आत्मा अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, और शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। तो आत्मा छह विकारों से रहित है, ये बात बतला दी। पहले चरण में तो ये बात बतलाई उनकी सूत्र रूप से थी, कि सूत्र रूप से यह बात बतलाई, न जायते मृत्यु वा कदाचिन अयम आत्मा, ये आत्मा न तो कभी जन्मता है, कदाचिन माने कभी, न तो कभी जन्मता है और न कभी मरता है, माने उत्पत्ति और विनाश में आत्मा रहित है। उत्पत्ति और विनाश से रहित कहने से छह विकार उसके अंतर्गत आ जाते हैं, किंतु शरीर भी एक प्रकार से स्थापित कर दिया। पहले चरण के बीच के मां उत्पत्ति और विनाश प्रधान जो एक प्रकार से थी विकार है, उससे आत्मा रहित है, ये बात सूत्र रूप से कह दी। और तीन चरणों में फिर उसका विस्तार कर दिया, विस्तार करके के छह विकारों से रहित है ये पृथक पृथक बतला दिया। कैसे? दूसरे चरण के मां नायन भूतवा भविता वा न भूय अयमात्मा, उत्पन्न होकर के और फिर होता है कायम होता है ऐसी बात नहीं। तो इसमें अस्तित्व जो सत्ता रूप जो परिणाम है विकार है उसका आत्मा में अभाव दिखलाया। फिर कहा अजय अस्तित्व जन्म का अभाव बताया आत्मा में, जन्म रूप जो विकार है उसे आत्मा रहित है। अजय नित्य है और नित्य कहकर के ये बात बतलाई, नित्य कहकर के कि उसका क्षय नहीं होता, क्षय का अभाव बतलाया अजोनित्य। और शाश्वत कहकर के ये बात बतलाई कि उसके मां परिणाम नहीं होता, वो सदा एक सा ही रहता है। अजोनित्य शाश्वत हो एवं पुराणों, पुराण कहकर ये बतलाई कि ये बढ़ता नहीं, वो बढ़ा हुआ। तो तीसरे चरण के मां ये चार उसका विकार भिन्न भिन्न रूप से बतलाया। और न हनते हन माने शरीरे, शरीरे हन माने अन्न हनते, शरीर के नाश होने पर उसका नाश नहीं होता। ये आत्मा विनाश परिणाम से विनाश विकार से रहित है, इसमें इसका विनाश नहीं होता, इसमें वो विनाश से रहित है। तो पहले जो बताया था पहले चरण उत्पत्ति और विनाश, वो यहाँ विनाश परिणाम उसको अलग करके बतला दिया। तो इस प्रकार से कि आत्मा विकारों से रहित है और शरीर विकार वाला है, ये बात यहाँ बता रहे। तो ये समझना चाहिए कि संसार के जितने जो पदार्थ हैं, जो देखने में आते हैं, बुद्धि के समझ में आते हैं और बुद्धि आदि जो हैं, ये सारे के सारे पदार्थ जड़ है, जड़ का समूह है। ये संसार रूपी एक वृक्ष जड़ का जो समूह है ये संसार रूपी वृक्ष है, तो उस वृक्ष की जो शाखा है वो नीचे और ऊपर सब जगह से फैली है और वो बड़ी है किससे, गुण प्रविधा सतर स्तंभ, इन गुणों से उनका विस्तार हुआ है। गुण क्या है कि जैसे जल के सिंचने से और वृक्ष की वृद्धि होती है, तो इसी प्रकार से कि ये जो गुण जो है सतर स्तंभ ये इससे इसकी बढ़ोतरी हुई और विषय प्रवाला बढ़ोतरी क्या की, ये जो आपने विषय रूपी जो प्रवाल माने कुंकला माने जो पहले जो हरे हरे पत्ते निकले आरंभ के बीच में उसको कुंपल कहते हैं, वो आपने समझो कि ये विषय आपने उसके कुंपले हैं, तो ये कुंपले किससे बड़ी कि आपने जल सींचने से, तो जल क्या हुआ कि सत्र स्तंभ तीन गुणों का समूह, तो मनुष्य आपने सात्विक राशि तामसी जिस प्रकार का कर्म करता है उसी प्रकार का समझो कि उसका परिणाम होता है, तो इस प्रकार से वृक्ष बना। तो आगे श्लोक के बीच के माँ स्थूल जो वृक्ष है उसका विवरण बताया गया कि दुनिया के माँ जितने जो शरीर हैं, जितने जो लोक हैं, जितने जो पदार्थ है जड़ वे सब एक प्रकार से ठीक अपने क्षर के नाम से भगवान ने कहा है, यहाँ वृक्ष के नाम से कहा है। अधस्त मूलानु संसतानी और कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, अब मूलों की बात आती है, वो ऊर्ध मूल वो नहीं, वो तो शरण लेने के योग है, ये मूल है तो काटने के योग, इस बात इसमें बहु वचन है उसमें एक वचन है। तो अदृश्य मूलानी अनुसंततानी कि बल्कि मूला जो है वो भी नीचे और ऊपर सब जगह पसरी, जैसे उसकी शाखा नीचे ऊपर पसरी इसी प्रकार से उसकी मूला भी नीचे ऊपर पसरी। तो ये कौन सी मूला है, ये हिंता ममता बासना और उनका ममता वासना आसक्ति कामना आदि ये सब ये बहुत दिया कि बहुत है इसलिए बहुत दिया और पशु ये समझा तो सब लोगों के जिसके में मनुष्यों ने भी पशुओं ने भी पक्षियों ने भी जानवरों ने देवताओं ने भी यहां से लेकर लेकर के और ब्रह्म लोग तक जितनी जो जीव वास करते हैं उन सब के जिसके में ये मूला से पसरी हुई है, किन्तु उन लोगों के में ये बांधने वाली नहीं, यह सब भोग्य नहीं है और मनुष्य नीचे माँ वो बांधने वाली है। कहते हैं कि कर्मानुबंधिनी कर्म के द्वारा सात्विक कर्म राशि कर्म तामसी कर्म इस प्रकार के जैसे जो कर्म है उस कर्मों के अनुसार इस मनुष्य लोक ने जीवों को मनुष्यों को बांधती और लोगों ने और लोगों ने नहीं बांधती, क्योंकि तो भोग्य नहीं है वहां नए कर्म नहीं बनते, तो कर्मानुबंधिनी कर्मों करके बांधने वाली वह मूला जो है इस मनुष्य लोक में या दूसरे लोगों के बीच में नहीं। तो यह दो श्लोक का अर्थ आप कहा और तीसरा श्लोक बताया जाता है न रूपमस्य है तथोपलभ्यते नाम तो न ताबीर न तसं प्रतिष्ठा अस्वत्थनेन सुविरूढ़ मूल मसंग दृढ़ चित्वा। अब देखो ख्याल करके न रूपम अस्य इह तथा उपलब्धते माने यह माने इस लोक में इस संसार के बीच के मां तथा माने जगह तो यहां तथा सब रहते पड़ा यथा का अध्यार करना चाहिए कि यथा माने जैसा बतलाया गया है तैसा इसे संसार रूपी वृक्ष का स्वरूप मिलता नहीं, कैसा बतलाया गया अश्वत्थम अश्वत्थम प्राहुरब्धम ये जो असत जो है सो अव्यय कहा गया तो अविनाशी, तो अविनाशी कहा गया वहां किंतु जैसा अविनाशी कहा गया है तैसा स्वरूप इसका इस लोक के जिसके मां मिलता नहीं, ये तो क्षण क्षण के मां विनाश होता है क्षण भंगुर है, इसलिए ये बात यहां साफ करके बतलाई पहले श्लोक के वो तीसरे चरण पहले श्लोक के मां जो पूर्वार्ध के मां जो बात बतलाई थी उसका यहाँ खुलासा करके बताया कि जैसा रूप इसका बतलाया था वहां कि यह संसार रूपी वृक्ष अविनाशी है तो यहाँ कहते हैं कि वहां था किंतु प्रवाह रूप से अविनाशी है, वास्तव के मां अविनाशी नहीं है, वास्तव में जो चीज हो तो कायम रहे वो मिले किंतु जैसा बताया ऐसा स्वरूप इसका मिलता नहीं। और नामपुर में चार नेतृसंग प्रतिष्ठा ये संसार रूपी जो वृक्ष है इसका न तो अंत है कि अमुक तारीख के बीच में ये समाप्त हो जाएगा वहां तक तो चलेगा और फिर ये नहीं रहेगा, तो इसका कभी अंत भी नहीं है और इसकी आदि भी नहीं। ये फलानी मिति से फलानी अपने फलाने दिन से ये शुरू हुआ है, इसकी आदि भी नहीं मिलती। अब नक्षण प्रतिष्ठा इसकी स्थिति भी नहीं, क्योंकि क्षण क्षण के मां परिवर्तन होता रहता है, तो इसकी स्थिति क्षण के मां नहीं आती। इस संसार रूपी वृक्ष तो क्या करना चाहिए कि जब ऐसा है, मैं जिसकी आदि, मैं जिसका अंत, और मैं जिसकी स्थिति, और मैं जिसकी वास्तविक में स्थायी सता, सता भी अच्छी ऐसे नहीं, और ये क्षण क्षण के बीच में परिवर्तनशील नाशवान जो है, ऐसा संसार वृक्ष है। तो हमको क्या करना चाहिए कि इसके संग के कारण ही हम लोग संसार के मां भरते फिरते हैं चुरा चुरा योनियों के बीच में। तो कहना ये चाहिए कि इसको काट डालना, और काट करके समझ लेने की जगह इसकी समझी से तब कहते हैं कि अस्वस्थ मेलन सुविध मूलम असंग सत्रेन दृढ़ शिक्षा एवं अस्वथम। ये जो संसार की जो वृक्ष है तो कैसा है कि सुविध मूलम, जिनकी मूला बहुत ही दृढ़ है। कौन सी मूला? हंता ममता वासना कामना इत्यादि, ये मूला है, बहुत ही इसकी मूला से दृढ़ है। माने ये अनादि काल से की हंता ममता वासना भी है, ये नहीं कि पहला इनके साथ में हमारा समय नहीं था जीवन का, और फिर बाद में हो गया, तो नहीं, ये सदा से ही है। जब से ये जीव है तब से इसके कर्म है, और तब से ही वासना है, और तब से ही हंता ममता है, ये सब पदार्थ सदा से ही है। वो यहाँ से मूला है जो बड़ी भारी आपने से दृढ़ है। तो क्या करना चाहिए? असंग सत्रेण दृढ़ चित्रा, असंग संग नाम राजता है, राग को आसक्ति को, और असंग नाम वैराग है, राग का अभाव का नाम वैराग, संग मन असंग, संग का अभाव असंग। तो वैराग रूपी शस्त्र के द्वारा, कैसा वैराग रूपी शस्त्र? कि दृढ़ वैराग, दृढ़ मन तीव्र वैराग, उसी को योग शास्त्र में पर वैराग के नाम से कहा है। तो साधारण वैराग से ये नहीं कर सकता, शस्त्र जो है इतना बड़ा जो वृक्ष है, उसकी पेड़ी है, उसकी मूला है, उसकी जड़ा है, ये सब जो सही काट डालना है इस वृक्ष को, उनकी जड़ा कि ये हंता ममता वासना आदि जड़ा पीढ़ी के सही से इस वृक्ष को काट डालना चाहिए। तो वैराग यदि तेज करना हो, जैसे छुरा है ना, छुरे को तेज करना है तो किस वक्त किया जाता है? स्नान पर। तो इसके लिए स्नान क्या है? सत्संग इसके लिए स्नान है। सत्संग का अभाव तब तो सब जो शास्त्र है उनका संग भी ऐसे स्थान है, उस पर धार में खूब तेज कर ले और फिर काटना शुरू कर। और जब छुआ तीक्षण है और समझो कि आपने खूब धार उसके, तो फिर उसके फिर धार दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही बार में समाप्त। तो कैसा आपने छुरा होना चाहिए? सत्य कैसा होना चाहिए कि दृढ़ वैराग रूपी सत्र, वैराग नहीं दृढ़ वैराग रूपी सत्र, जिसे एकदम यत्ता कहा जा सके, इसको तीव्र वैराग कहते हैं, इसका नाम पर वैराग है। वो पर वैराग जो है, जैसे तब परम पुरुष ख्याति गुण वै कृष्ण, वो पर वैराग है कि पुरुष के ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से की जो गुणों के बीच के मां भी कृष्ण का अभाव हो जाता है, तो प्रथम परमात्मा का इस प्रकार का ज्ञान होता है, और उस ज्ञान से वैराग उत्पन्न होता है, उस ज्ञान को कहते हैं विवेक, और उस विवेक के बाद में होता है वैराग, और वो तीव्र वैराग जो है, पर वैराग है तीव्र वैराग है, तो तीव्र वैराग है वो ये शस्त्र, ऐसे शस्त्र के द्वारा इस संसारी वृक्ष को एकदम काट डालना चाहिए। काट डालना क्या है कि मिटा देना, मिटाना क्या है कि संसार के संकल्प को उठा देना, माने संकल्प रहित हो जाना, फुरना रहित हो जाना, संसार के साथ में जो हमारा संग है वो समग्र विच्छेद, अपने संग का संग विच्छेद कर देना, इंद्रियों का जो विषय से संबंध है वो संग विच्छेद कर देना, मन का जो संसार से संबंध है वो संग विच्छेद कर देना, माने फुरना रहित हो जाना। तो ये इस वृक्ष का काटना, इसी का नाम ऊपर की वैराग जो है, इसके ऊपर की अपने आप ही हो जाती है। संसार के मन जो प्रीति है, इसके अभाव का नाम तो है वैराग, राग के अभाव का नाम है वैराग, संग जो है उसी का नाम राग, असंग है उसका नाम वैराग। तो संसार के में जो प्रीति है, प्रीति के भाव का नाम तो है वैराग, और संसार के में हमारे इंद्रियों के चित्त की जो वृत्तियां लगी हुई है उनका संग भी छेद हो जाए उसका नाम परम उपरति। तो परम वैराग परम उपरति, तो परम वैराग क्षति परम उपरति होती है, और परम उपरति होने के बाद को फिर क्या करना चाहिए उसके बाद में चौथा से लोग कहते हैं कि उसके बाद का उपाय कि तथा पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गतान निवर्तन्ति भूय तमेव साधन पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिद्धा पुराणी। ततमन तत्पश्चात तथा पदम तत् परिमार्गितव्यम, इसके बाद क्या करना चाहिए कि उस पद का अन्वेषण करना चाहिए, खोज करनी चाहिए। कौन से पद की? कि यस्मिन् गतः न निवर्तन्ति भूय, जिसने गया हुआ पुरुष है वो लौट कर वापिस नहीं आता है, वो या माना फिर लौट करके वापिस नहीं आता है, माने उस पद की खोज करनी चाहिए कि जहां जाकर के ये प्राणी फिर लौट करके वापिस नहीं आवे, उसका अन्वेषण करना चाहिए, उसकी खोज करनी चाहिए, ढूंढना चाहिए उसकी। तो किस प्रकार से ढूंढने का क्या उपाय है? कहते हैं कि तमेव साधन पुरुषं प्रपद्ये, तम एव आदि पुरुषम प्रपद्ये, जो आदि पुरुष, आदि पुरुष पूर्ण परमात्मा, उस आदि पुरुष की प्रपद्ये हम प्रपद्ये, माने मैं उस आदि पुरुष की शरण हूं, इस भाव से भगवान की शरण होकर के उस आदि पुरुष परमात्मा की मैं शरण हूं, इस भाव से परमात्मा की शरण होकर के और उस पद का अन्वेषण करना चाहिए कि जहां जाकर के यह मनुष्य लौटकर वापिस नहीं आता। वो आदि पुरुष कौन है? यत प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी, माने यतना ने जिस से ये जो संसार जो है, जिस परमात्मा से इस संसार की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है, उत्पत्ति और विस्तार इस संसार का जिस परमात्मा से हुआ है, उस परमात्मा की मैं शरण हूं। वो कौन है? ऊर्ध्वमूलम, जो बताया गया कि इसकी मूल से ऊपर में है और जो की जड़ ऊपर में है और पेड़ी और शाखा नीचे, तो अदर शाखम कि देखो ये संसार रूपी वृक्ष की बात और ध्यान दो। एक वृक्ष की जड़ पृथ्वी में होती है तो उसको उखाड़ना मुश्किल है, और जब उसकी जड़ पताल में चली जाती है तो उसको उखाड़ना और भी मुश्किल है। कहता भाई इसको ऊपर से चाहे काट दो, उसकी जड़ तो पताल में चली गई। संसार में कहा जाता है कि तुम क्या इसकी जड़ उखाड़ दोगे, इसकी जड़ तो पताल में है, इसकी जल इसकी जड़ ऊपर में आकाश के मां, जिसकी आकाश के मां जड़ है और उसकी आपने क्या यूज है, उसका क्या वैल्यू है? तो ये संसार का जो वृक्ष है तो कटा हुआ पड़ा है, इसके काटने में कोई कठिनाई नहीं है। इस वास्ते ये बताया कि जिसकी जड़ ऊपर के जिसके मां है। दूसरी बात है उत्तर में जड़ बतलाने का कि परमात्मा खुद एक प्रकार से प्रकट होकर के ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, फिर ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की, तो ब्रह्म लोक जो है वो सबसे ऊपर है। तो इस वास्ते ब्रह्म लोक से थी फिर ये सब लोगों की रचना हुई, तो इस वास्ते ऊपर में इसकी जड़ है, ऊपर में इसकी पेड़ी। जो ब्रह्मा का लोक है वो पेड़ी है, ब्रह्मा खुद पेड़ी है और परमात्मा का जो परम धाम है वो परमात्मा का ही स्वरूप है, और परमात्मा तो इसका संसार का कारण है और वो शरण देने के योग्य। अब ये बात आई कि ठीक है ये वृक्ष की बात आपने बहुत अच्छी बताई, किंतु आपने जो उस परमात्मा के परम पद को प्राप्त हो जाता है तो इसके कैसे लक्षण होते हैं? इस भगवान की शरण होने से क्या होगा कि उस पद को प्राप्त हो जाएगा कि जहां जा करके ये जीव वापिस लौट करके नहीं आता, उस पद को प्राप्त हो जाता। उस पद को जो प्राप्त हो जाते हैं उनके कैसे लक्षण होते हैं वो बात बताई जाए। निर्माण मोहराज प्रसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा गंभीर विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा पदम अभ्यंकर। निर्माण मोहा जो मान और मोह से रहित है, जिनमें मान और मोह का अंश मात्र भी नहीं है, मान माने समझो कि अभिमान और मोह माने अज्ञान, मान और मोह से अर्जित संग दोषा, संग माने आसक्ति के दोष को जिन्होंने जीत लिया है, जिनके मन समझो कि आपने अतिशय वैराग है, तीव्र वैराग है जिनके मन, आसक्ति के दोषों को जिन्होंने जीत लिया है और अध्यात्म नित्या परमात्मा के ध्यान में जिनकी नित्य स्थिति है, हम प्रपद्ये माने उस परमात्मा की मैं शरण हूं, इस प्रकार का जो भाव है परमात्मा की संग में, क्या कि परमात्मा का ध्यान करना, तो परमात्मा के ध्यान में नित्य स्थित रहना ही अध्यात्म, जो परमात्मा का स्वरूप उसमें स्थिति है, तो अध्यात्म नित्या परमात्मा के स्वरूप में जिसकी नित्य स्थिति अविनिमित कामना, निवृत्त कामना ने विनिमित विशेषता से जिनकी संपूर्ण कामनाएं निवृत्त हो गई है उन पुरुषों को कहते हैं विनिवृत कामना, जिनमें कामना वासना इच्छा लालसा ये इनका नाम स्थान नहीं है, इसको कहते हैं विनिवृत कामना। और दुंगिर की मुक्ता और दुंगों से जो विमुक्त है, दुंगता की वेद वस्तु जैसे हर्ष शोक राग द्वेष अनुकूलता प्रतिकूलता शीत उष्ण आदि जितनी जो संसार के मां दुंगे हैं, एक से एक वृद्ध ऐसे वेदों के एक मिलकर एक जोड़ा, ऐसे दुंगों से भी मुक्त है। कहते हैं कि सुख दुख संगी सुख दुख जिनकी संज्ञा है सुख दुख ऐसे हर्ष शोक राग द्वेष ऐसे जो वेदों जो वस्तु का जो एक जोड़ा है उसे एकदम जो मुक्त हो गए विमुक्त कर्णों को, मतलब जो कि बिल्कुल ही इनके साथ में संबंध नहीं है, जंगे विमुक्ता सुख दुख संगे और गति अबूढ़ा अमूढ़ा जिसके में अमोभाव नहीं है, ऐसे ज्ञानी महात्मा पुरुष गति अमूढ़ा पद्मा